ओम शांति। हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी आ गए हैं, साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर आदरणीय सरस्वती बहन जी, आदरणीय सुमन बहन जी और संजय भाई को कि मंच पर आए और हम विधिवत भट्टी की शुरुआत करें प्यारे बाबा की याद के साथ। तो अपने बड़ों की दृष्टि लेते, शक्ति भरते चले प्यारे बाप दादा का आह्वान करते हैं और भट्टी की सुंदर शुरुआत करते हैं। लगी लगन बस एक ही यही, कौन सी थोड़ा जोर से बोले, हमें तपस्या करना है। और तपस्या भी इसलिए क्योंकि अब घर चलना है और घर जाने के लिए हमें संपूर्ण पावन होना होगा, बाबा के जैसा बनना होगा। और तपस्या ही वो साधन है, माध्यम है, जिसके द्वारा आत्मा शुद्ध पवित्र होकर वापस घर जा सकते। और यही प्यारे बाबा की आश भी है। बाबा लेने ही तो आए हैं ना हम सबको, तो चलने की तैयारी के लिए, अपने आप को बाबा के समान बनाने के लिए और साथ ही साथ बाबा की सभी आशाओं को पूरा करने के लिए इस सुंदर भट्टी का आयोजन किया गया है। और इस भट्टी में आप सब आए हैं बाबा के इस बेहद घर में, तो आप सभी का बाबा की ओर से और सभी मधुबन ज्ञान सरोवर निवासियों की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, जोरदार तालियां अपने लिए ही अपने स्वागत में बजा लें, क्योंकि ये सुंदर परिवार, ये सुंदर घर हमेशा ही बाहें पसारे आपका इंतजार करता है और आप सब से ही यहाँ की रौनक है। और आप सब की तपस्या इस स्थान को भी बहुत सुंदर सुवासित करती है और आपको तपस्या करने में भी ये सुंदर स्थान मददगार बनती है। और हम सबको तपस्या कराने के लिए, अपनी शुभ भावनाओं से, वरदानों से सजाने के लिए मंच पर भी दिव्य विभूतियां उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से अपने बड़ों का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी हमेशा ही सभी को विशेष करके बहुत प्यार से आमंत्रित करती हैं इस परिसर में कि सभी आएं बाबा के इस घर में और इस घर का संपूर्ण रूप से आनंद लें, लाभ उठाएं। तो आप सब लाभान्वित होने के लिए आए हैं, तो अगले 3-4 दिन आपके जीवन के बहुत ही सुंदर यादगार दिन होंगे। और इन दिनों को आप ऐसे सुंदर एक एक पल को इस्तेमाल कीजिएगा कि हमेशा के लिए ये आपकी उन्नति के, आगे बढ़ने के और साथ ही बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले हो जाएं। तो आप सभी के स्वागत और सुंदर अभिनंदन के लिए आप जानते हैं हमेशा ही मधुबन की एक सुंदर परंपरा कि मधुर वाणी ग्रुप हमेशा ही आपके स्वागत के लिए तैयार रहता है। तो हमारे बीच आ रहे हैं प्यारे नितिन भाई मधुर वाणी ग्रुप की ओर से, आप सभी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, क्योंकि सभी मधुबन का कण कण बेहद आनंदित है आपके आगमन से। और क्या कह रहा है मधुबन का कण कण, क्या प्रेरणा दे रहा है आपके लिए, किस प्रकार के सुंदर भाव हैं, उन्हें अपने शब्दों में पिरोकर नितिन भाई हमारे बीच हैं। हम तालियों से अभिनंदन करते हैं नितिन भाई का। हम सबके स्वागत के लिए एक सुंदर गीत लेकर प्रस्तुत हैं।
ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। म्यूजिक आदि वाले दिन बाबा फिर से हमें दिखाते हैं, 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में कराते हैं। बज रहे विनाश के है उधर नगाड़े, दिख रहे इधर है नवयुग के नजारे। अग्रिम दल के रत्नों का तप रंग लाया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। अंतर्मुख हो आओ हम योग का करें प्रयोग, मनसा सेवा सकाश में मिलके करें सहयोग। शांत और एकांत मिला तप का ये मौका है, उड़ो पंछियों उड़ने से अब किसने रोका है। वाह बाबा वाह ड्रामा दिल ने अब गाया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ऐसी भट्टी हो जो यादगार बन जाए, और भट्टी की कोई दरकार ना रह जाए। योग भट्टी की ज्वाला आओ ऐसी जलाए, संसार से पुराने संस्कार सब जल जाए। निर्विघ्न रहने करने का मौसम आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ताया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई, शुभ स्वागतम सत स्वागतम। एक बार पुनः जोरदार तालियों से शुक्रिया भी अदा करें और साथ ही अपना ही अभिनंदन स्वीकार करें। ज्ञान सरोवर में गुलदस्ता आया है, तो गुलदस्ता अलग अलग स्थानों का, अलग अलग पुष्प बाबा के अलग अलग बगिया से आए हुए हैं, और सचमुच सब मिल करके ऐसी तपस्या करेंगे, ऐसी भट्टी करेंगे जो और किसी भट्टी की दरकार ना रह जाए। करेंगे ना ऐसी, या भट्टी पे भट्टी, भट्टी पे भट्टी करते रहेंगे, ये ऐसी भट्टी हो जो सचमुच और किसी भट्टी की दरकार ना रहे। हमें केवल 4 दिन मिले हैं और दादियों को बाबा ने 14 वर्ष तपस्या कराई, तो इन 4 दिनों में ऐसी गहन अनुभूति करेंगे जो वो 14 वर्ष की तपस्या का हमें भी बाबा अनुभव कराएं। क्योंकि बाबा कहते ही हैं कि जो आदि सो अंत, जो आदि में बाबा ने अनुभूतियां कराई बच्चों को, हर एक बच्चे का अधिकार है। यदि हम लगन से तप करेंगे तो वही अनुभूतियां बाबा हम सबको भी कराएंगे। क्योंकि योग तो हम करते ही हैं, यहाँ तपस्या करने आए हैं, और तपस्या बैठ के की जाती है ना। तपस्वी को बैठ के दिखाते हैं ना, बैठ के गहन साधना में लीन। तो कैसे हम लीन होंगे, तल्लीन होंगे, और कैसे इन 4 दिनों में हम 14 वर्ष के गहन साधना की अनुभूति कर सकते हैं, क्या लक्ष्य लेकर के बैठे इस भट्टी का, जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो क्या है आपको बुलाने का, क्या सुंदर एक उद्देश्य है, उद्देश्य रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुमन बहन जी को। आप सभी जानते हैं जीवन जीने के 2 तरीके हैं, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। आपका जीवन ऐसा ही है, सुमन की तरह खिली रहती हैं और अपनी खुशबू सब तक फैलाती रहती हैं देश विदेश में। बाल्यकाल से ही बाबा की गोद में आप पली बढ़ी हैं, और जैसे ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग आपने पूरी की, वैसे ही बाबा की बेहद सेवाओं में आपने स्वयं को समर्पित कर दिया। मधुबन घर में एजुकेशन विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, मैनेजमेंट ट्रेनर, और ज्ञान सरोवर के सभी प्रोग्रामों को बहुत ही सुचारू रूप से कोऑर्डिनेट करती हैं। आप यहाँ आए हैं, शुरू से लेकर अंत तक सारे ही प्रोग्राम्स का बहुत ही सुंदर ढंग से सुनियोजित रूप से उसे व्यवस्थित रूप से आप तक रखने, पहुँचाने, आपको लाभ देने का सुंदर कार्य आप करती हैं। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका शब्दों से स्वागत भी और इस भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य भी आप सबके सम्मुख रखें आदरणीय सुमन बहन जी।
ओम शांति। मंचासीन आदरणीय निर्मला दीदी, सरस्वती बहन जी, संजय भाई, रुपेश भाई, और सभा में उपस्थित आप सभी होली हंस जो विभिन्न जगहों से यहाँ पधारे हैं ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाकर परिया बनने के लिए, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी ज्ञान सरोवर में तो कॉन्फ्रेंस के का सीजन चल रहा है, लेकिन उसके बीच में आप सभी को एक बहुत सुंदर मौका मिला है भट्टी करने का। और ज्ञान सरोवर में जो भट्टी करने के लिए इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन उसमें से आपको मिला है। आप सभी इतने भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, है ना। बाबा के बने तो भाग्यशाली हो ही गए, लेकिन उसके साथ साथ सौभाग्यशाली और पद्मा पद्म भाग्यशाली हम सभी हैं। भाग्य के कारण से यहां आए हैं और भाग्य बढ़ाने के लिए। संगम युग इतना सुंदर समय, अपने भाग्य के कलम खींचने के लिए, भाग्य के लाइन खींचने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर कलम दिया हुआ है, और उस कलम को मजबूत बनाने के लिए कलम कौन सा है, कर्म है ना, और उस कलम को मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए तपस्या की बहुत जरूरत है ना। बाबा के बनने के बाद तो ज्ञानी तो हो ही जाते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ वो शक्ति की जरूरत है जो अपने को परिवर्तन करे और अनेकों को परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा हम सभी को दे। तो उसके लिए हमें इस सुंदर मौका मिला है अपने अंदर वो शक्ति भरने के लिए और अपने आप को परिवर्तन करने के लिए। और परिवर्तन करना है शक्ति भरने के लिए, बहुत जरूरी जो चीज है वो है स्थिरता। जैसे रूपेश भाई कह रहे थे, योग तो हम सभी करते हैं, कर्म योग भी हम सभी करते हैं, चलते फिरते कर्म योग तो करते ही है, क्योंकि हम सभी के जीवन में समय बहुत कम है बैठ करके तपस्या करने के लिए। लेकिन उस संस्कार अभी हमें बनाना है बैठ के तपस्या करने की। तो अभी आपको मौका मिला है 3 दिन, आप कितना स्थिरता से आप बैठ करके बाबा को बहुत शक्तिशाली याद आप कर सकते हैं, वो हम अभ्यास यहां करके जाएं। क्योंकि यहां आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, ना खाना बनाने की या फिर नौकरी में जाने की या फिर बच्चों को देखभाल करने, किसी भी जवाबदारी की जवाबदारी है ही नहीं, केवल स्टूडेंट लाइफ है ना। रूहानी स्टूडेंट लाइफ आपका है, अभी पूरी तरह उसके बारे में आपको ध्यान देना है, फोकस देना है। लेकिन अभ्यास ना होने के कारण से मन चंचल हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, लेकिन फिर से पकड़ करके वापस बिठाने का अभ्यास अभी करने की जरूरत है। और वर्तमान समय बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी है कलयुगी दुनिया में, उस डिस्ट्रैक्शंस के कारण से हमारे जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है। हम पहले तो 1 घंटा लगातार बैठ करके योग कर सकते थे, क्लास सुन सकते थे, लेकिन अभी अटेंशन स्पैन बहुत कम हुआ है। 5 मिनट 10 मिनट एकाग्रता से किसी बात को सुनते हैं या फिर बैठ करके योग करते हैं, फिर उसके बाद मन भटकना शुरू हो जाता है ना। तो वो समय की भलियारी कहे या फिर अपने अभ्यास ना होने के कारण से ऐसा हो रहा है, तो वो बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए अभी पूरी तरह अभी इस पर ध्यान देना है, हम क्या स्थिरता से बैठ सकते हैं, और उसके लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। जैसे तालाब में पानी अगर बहुत डिस्टर्ब है तो उसकी मिट्टी बहुत उसमें गुला हुआ होता है, लेकिन वो पानी को डिस्टर्ब ना करे तो क्या होगा, धीरे 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 मिट्टी नीचे बैठ जाता है, फिर वो पानी बहुत शुद्ध, ऊपर वाले जो पानी है वो बहुत शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सारा जो किचड़ा है मिट्टी है वो नीचे बैठ जाता है। ऐसे अगर हमारे मन में बहुत सारी चिंता है, भय है, बहुत सारे ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं, बहुत सारी बातों के बारे में हम सोच रहे हैं, जैसे वो पानी और मिट्टी घुल जाता है, बहुत सारी बातें घुल रहा है, तो इसीलिए वो क्लियर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है अपने जीवन में। बाबा तो कहते हैं समस्या का समाधान मैं देता हूं, लेकिन समाधान भी जब तब मिलता है तब जब मेरा मन शांत हो। बाबा जो सिग्नल दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए भी मन में वो शक्ति और शांति की जरूरत होती है। जब पूरी तरह सेटल हो जाता है तो फिर वो क्लैरिटी जब आएगा तब हमारे जीवन की जो भी समस्याओं का समाधान हमें समझ में आता है कि हाँ ये करने से ऐसा होगा, है ना। ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं, इसका मतलब क्या है? बाबा के बनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं, इसका मतलब है बाबा के साथ कनेक्शन हमारा ठीक नहीं है। और दूसरी बात, पूरा पूरा लाभ हम नहीं उठा रहे बाबा का। क्यों? बाबा तो दे रहे हैं लेकिन हम क्यों नहीं लाभ उठा रहे हैं? क्योंकि मन के अंदर जो मिट्टी का पानी जो है वो भरा हुआ है, उसको भी सेटल करना है। सेटल करने के लिए शांति की जरूरत है, है ना। तो शांति की शक्ति को हमें बढ़ाने की जरूरत है, और शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मौन, है ना। भक्ति मार्ग में भी मौन की शक्ति बहुत बताया गया है, और यहां यज्ञ में भी, आदि काल में भी दादियां बहुत मौन भट्टी किया करते थे और कराते भी थे सभी को, है ना। अभी ये फिर से हम क्यों ना मौन भट्टी करें, केवल ऊपर ऊपर से हाँ ठीक है आए, क्लास सुन लिया, योग थोड़ा बहुत कर लिया, ये नहीं, पूरी तरह मौन भट्टी हम जरूर करें। जब आपको शेड्यूल मिला होगा तो उसके ऊपर ये भी लिखा है मौन तपस्या भट्टी। तो मौन हमारा बहुत ही मुख्य चीज है, और मौन किन चीजों का है? तीन चीजें बहुत जरूरी है मौन में। सबसे पहली बात जो स्थूल चीज, जिससे हम सूक्ष्म की तरफ जाएंगे, स्थूल चीज में मौन किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मोबाइल की। मोबाइल के साथ कितना अटैचमेंट है हमारा, कितना मोह है मोबाइल के साथ? सबसे ज्यादा मोह हमारा मोबाइल के साथ है। इंसान के साथ नहीं है, अपने साथ नहीं होता है, मोबाइल के साथ मोह होता है। और मोबाइल एक बहुत ही सुंदर, एक रॉयल माया है, तो बहुत जल्दी मन को भटकाता है। कुछ भी काम नहीं है, आराम से बैठे हुए तो तुरंत ध्यान कहाँ जाएगा? मोबाइल पे जाएगा, फिर ब्राउज करना शुरू करेंगे, व्हाट्सएप देखना शुरू करेंगे, कुछ काम नहीं है लेकिन फिर भी ब्राउज करना शुरू करेंगे, व्हाट्सएप देखना शुरू करेंगे, पूरा ध्यान वहां चला जाता है। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा मन डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, फिर हम एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आज क्या करेंगे, मोबाइल का त्याग कर पाएंगे? त्याग से भाग्य बनेगा। बाबा ने कहा हुआ है भाग्य बढ़ाने का तरीका है त्याग, त्याग के बिना भाग्य नहीं बन सकता। तो सबसे पहला जो त्याग हमें आज करना है वो मोबाइल का त्याग करना होगा। आज रात को सोने से पहले जो भी कारोबार है आपका पूरा कर लीजिए फोन पर, घर में फोन करना है, जो भी कारोबार है आप पूरा करके आज रात को जो स्विच ऑफ करेंगे, फिर ऑन कब होगा? 3 दिन के बाद, मंगलवार सुबह नाश्ते के बाद, ठीक है। सैटरडे, संडे, मंडे, ये 3 दिन पूरी तरह मौन भट्टी सब मिलकर के करेंगे। और ये संगठन भी ऐसा है, सब मिल करके कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। अकेले भट्टी करना और संगठन में भट्टी करना, इसमें अंतर है ना। तो ये एक तो संगठन का इतना सुंदर मौका मिला है, और दूसरे स्थान का ज्ञान सरोवर में आप कर रहे हैं, इतने सुंदर दीदियां यहाँ होंगी और इतने महारथी भाई बहने यहाँ आकर के क्लासेस कराएंगे, तो उनका भी संग आपको बहुत लाभ मिलेगा उनके संग के द्वारा, है ना। तो इसीलिए इसका भी आपको लाभ लेना है। और दूसरा मौन कौन सा है? मुख का मौन, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति बोलने में जाता है। अगर वो बंद हो गया तो सारी एनर्जी हमारा सेव हो जाता है। तो इसलिए मुख का मौन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ इतने सालों के बाद अभी यहाँ आए हैं, लोगों से मिले जुले, एक दूसरे का ख्याल रखे, हालचाल पूछे, ठीक है मधुबन निवासियों से मिलेंगे करेंगे, जितना जरूरी है केवल उतना ही बोलेंगे। एकदम मौन रखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं रख पाते हैं लेकिन तो फिर जितना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, उतना ही बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे? ऊंची आवाज से नहीं, है ना। फरिश्ते कैसे बोलेंगे? वो तो फरिश्ते होंगे, वो तो मूवी की भाषा होगी, वो तो आवाज नहीं निकलता, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही धीमे आवाज से, जितना जरूरी है उतना ही आप सभी बोलेंगे। और यहाँ देखेंगे, हमको देखेंगे तो हमको तो बोल दिया कि मोबाइल ऑफ रखो, मौन रखो, लेकिन बाहर जाते हैं मधुबन निवासी, ज्ञानसर निवासी बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, उनका तो कारोबार है, रोज का ये बात है, तो इसीलिए उनका तो कारोबार चलेगा। उनको देख करके ये ना कि वो तो बात कर रहे हैं तो हम भी बात करेंगे, है ना, वो नहीं। ओंटे सो अर्जुन, मुझे करना, आप तपस्या करने आए हैं तो आप उसका पूरा लाभ उठाना है, है ना। और तीसरे मौन, मन का मौन, है ना। तो कई बार मुख से हम नहीं बोलते हैं लेकिन मन से बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चल रहे होते हैं, उसको भी हमें फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप लगाएंगे तभी तो सेटल होगा पूरा नीचे, है ना। तो फुल स्टॉप लगा करके केवल यहाँ जो क्लासेस हो रहे हैं, योग हो रहा है, उसी पर आप ध्यान देंगे, किसी और के बारे में आप ध्यान नहीं देंगे। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तपस्या नहीं कर रहे, योग नहीं कर रहे, क्लास मिस कर रहे, वो क्या कर रहे, नहीं, दूसरों को देखना ही नहीं है, खुद को देखना है और खुद को परिवर्तन करना है। अंतर्मुखता के गुफा में बैठ करके ऐसे तपस्या करना है जो संस्कार हमारा परिवर्तन हो जाए, है ना। तो ये तीन प्रकार के मौन, मोबाइल का मौन, मुख का मौन और मन का मौन। और मन के मौन में ये भी संकल्प ना उठे कि फलाने व्यक्ति का क्लास होना चाहिए था, ऐसा विचार आया, शेड्यूल देख करके आपको आया, इस भाई का क्लास क्यों नहीं है, इस बहन का क्लास नहीं क्यों नहीं है, ये भी संकल्प आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पक्का पक्का नहीं आना चाहिए। क्यों? किसके निमंत्रण पर आए हैं आप सभी? बाबा के निमंत्रण पर आए हैं और दीदी के दीदी निमित्त बने हैं। बाबा ही आपको निमंत्रण दिए हैं, लेकिन बाबा ही आपको देंगे ना। जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस स्पीकर के द्वारा जो देना है आपको, बाबा जरूर देंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलेगा ना कि ये फलाने व्यक्ति का क्लास होना चाहिए, ऐसा क्यों, तो वो जब चल रहा होता है, जो मिल रहा है उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे और अपने अंदर वो व्यर्थ विचार चल रहे होते। इसीलिए के पूरी तरह मन और बुद्धि को प्लेन और शांत रखेंगे तो मैक्सिमम आप ले सकते हैं इस भट्टी के द्वारा, है ना। तो अगर ऐसे भट्टी करेंगे तो ना केवल आप यहाँ परिवर्तन आप महसूस करेंगे, लेकिन वापस जाने के बाद भी वो लंबे काल तक वो शक्ति वो एनर्जी चलता रहेगा। यानी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को पुनः ज्ञान सरोवर में, बाबा के घर में, आप सभी के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमन बहन जी, आपने लक्ष्य स्पष्ट कर दिया। तो कौन कौन ये 3M का मौन रखेंगे? मोबाइल पूरी तरह, पहले तो फर्स्ट है मोबाइल, कौन 3 दिन तक पूरी तरह हाथ उठाए, हाथ उठाए। दीदी भी देख रही हैं, सुमन बहन जी भी, दीदी भी देख रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। एक बार अपने लिए ताली बजा लें, क्योंकि मोबाइल मौन है तो मुख का मौन और मन का मौन वो सहज होगा। और हमें सचमुच इस लक्ष्य के साथ बैठना है। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो यदि हिम्मत रखेंगे तभी तो बाबा की मदद का अनुभव करेंगे। और हम आए ही हैं इसी अनुभूति के लिए, पूरे जीवन हम बात करते रहे हैं, मन से भी मुख से भी, और करते ही रहेंगे। क्यों ना अंदर उतरें, अपने आप को देखें और बाबा से बात करें। एक साइकोलॉजिस्ट जंगल में बैठा हुआ था, अकेले बैठा था। कुछ उसके मित्र उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने सोचा कि यार ये बेचारा अकेला बैठा है, चलो इसको कंपनी देते हैं। उसके पास गए, कहा हम आपको कंपनी देने आए हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप मुझे कंपनी नहीं देने आए, अब मैं अकेला हो गया हूं, क्योंकि अब तक तो मैं अपने और ईश्वर की कंपनी में बैठा था। तो सचमुच जब हम अकेले बैठते हैं तो भगवान की कंपनी, वो हमें क्या देना चाहते हैं, उस चीज को अनुभव कर पाते हैं। तो बहुत दृढ़ता से एक बार फिर से हाथ उठाएं, पूरी दृढ़ता से 3M। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई हो और दिल से शुक्रिया आप सभी का। और इसी लक्ष्य को आप लेकर आए हैं तो अनुभूति की गहराई में भी उतरेंगे। तो चलें, हमारी यात्रा गहनता की ओर है, अंधकार से प्रकाश की ओर है। तो प्रकाशित करते हैं दीपक को भी। हमारे यहाँ की सुंदर परंपरा है दीप प्रज्वलन की, तो योग भट्टी के सुंदर दीप प्रज्वलन से पूर्व सरस्वती बहन जी हमारे बीच हैं। सरस्वती बहन जी हमारे बीच लुधियाना से पधारे हैं। बाल्यकाल से ही आप बाबा की गोद में पले बढ़े हैं और बाबा की सुंदर सेवाओं को चारों ओर फैला रहे हैं। तो अनुरोध करूंगा कि अपनी शुभकामनाएं हम सबको प्रदान करें, क्योंकि शुभकामनाओं के पुष्प और शुभकामनाएं दुआएं हम सबको बहुत जरूरी होती हैं, जो हमें बल देती हैं, आगे बढ़ाती हैं, हमारे संकल्पों को पूर्ण करती हैं। अनुरोध करता हूं सरस्वती बहन जी से।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा का हम सभी बच्चों से बहुत बहुत प्यार है, स्नेह है और शुद्ध मोह भी है। जब बच्चे इधर उधर योग तो करते हैं, लेकिन वो योग जब बाबा तक पूरा नहीं पहुंचता तो बच्चे खुद भी कहते हैं हमें अभी जरूरत है, हम एकांत में जाएं, बाबा की याद का वो शक्ति हम अपने अंदर भरे। तो मीठा बाबा हम सब बच्चों की पुकार सुनकर हम सबको ये सुअवसर यहाँ आने का देते हैं, क्योंकि जब भी हम शुभ कार्य के लिए आते हैं माया तो पीछे हटाती है, लेकिन हम विजयी होकर के आ गए तो ये भी बाबा का हमसे प्यार है और बाबा को हमसे प्यार है। बाबा के प्यार में हम यहाँ पर खींचे आए और बाबा का ये जो सुंदर स्थान है इसमें रहने का और रात और दिन तपस्या करने का ये सौभाग्य हम सभी को मिला, ये हमारा बहुत बहुत परम भाग्य है। और ऐसे तो ऋषि मुनियों ने तो जंगल में जाकर के तपस्या की, एकांत में मौन रहने की, उनके पास भी मोबाइल नहीं था, मन का भी मौन था, लेकिन उन्होंने उस परमात्मा को नहीं पाया। हम बच्चे तो घर ग्रस्त में रहते हुए साधनों को लेते हुए भी बाबा बीच बीच में इतनी प्यार की डोरी से हमको खींच लेता है और बाबा की मोहब्बत में बाबा के सर्व संबंधों का जब आनंद लेते हैं, वही हमारी सर्व प्राप्तियों की जो अनुभूति है, वही सच्चा योग और सच्ची तपस्या है। ये तो बाबा ने खुद ही आकर हमको सिखाया। जो हम अपनी मर्जी से कर रहे थे उसमें प्राप्ति नहीं हुई, ये बाबा ने परम धाम से आके ब्रह्मा के मुख से हमको हमारी पहचान दी और फिर अपनी भी पहचान दी और संबंध भी खुद ही जोड़ा। खुद ही क्या बोले, मीठे बच्चे, लाले बच्चे, सिकीलदे बच्चे, ये शब्द क्या है? ये शब्द ही तो सच्चा योग है। इस शब्द के आकर्षण में, बाबा के प्यार में खो जाएं कि भगवान खुद कह रहा है मीठे बच्चे, सिकीलदे बच्चे। खुद बाबा ने पहचान दी, तुम मेरे इतने ऊंचे लाडले बच्चे हो, देवताओं से भी ऊंचे हो। इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान से बाबा हम बच्चों का जो स्वागत करते हैं, या बाबा हमें इतने स्वमान से सजाते हैं, तो ये सजना ही हम सबका सच्ची तपस्या है। कहने को तपस्या है लेकिन एंजॉय है। बाबा से सर्व संबंध जोड़ें, बाबा के प्राप्तियों का अनुभव करें और बाबा के स्वमान में टिक जाएं, तो कैसा लगेगा? एंजॉय होएगा। ये बातें हमें पता होती हैं, पर हम अपने स्थानों पर नहीं कर पाते, मोबाइल को नहीं छोड़ पाते। पर बाबा का जो प्यार है वो खींच कर ले आया और ऐसे स्थान पर बिठा दिया। मैं रास्ते में भी अपने भाई बहनों को कह रही थी कि ये ज्ञान सरोवर हमें अच्छी तपस्या कराएगा, क्योंकि शांतिवन में तो सब क्या करते हैं, आधे योग में बैठते हैं, आधे मार्केट में मिलते हैं। यहाँ बाबा ने कोई मार्केट नहीं बनाई है, कोई स्थान ऐसा नहीं जो बाहर आप अकेले में घूमने चले जाओ। पांडव भवन में फिर भी नक्की झील है, वहां घूम आते हैं। यहाँ तो इस गुफा के अंदर आ गए और अच्छी तरह से तप कर ही बाहर निकलेंगे। तो मेरी यही शुभाश है, ऐसा जो बाबा ने हमको भाग्य दिया कि इस गुप्त गुफा में बैठ के हम पूरा लाभ लें और पूरे वाइब्रेशन यहाँ से पूरे वर्ल्ड में फैलाएं, तो ऐसे ज्ञान सरोवर की ये भट्टी का हम सभी बहुत बहुत लाभ लें, यही शुभाश है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शुक्रिया दीदी, सचमुच हमें गुफा में ही बैठे रहना है और ज्ञान सरोवर के परिसर में ही रहना है, क्योंकि यदि आप इस परिसर से बाहर जाएंगे तो आपको भालू और चीते मिलेंगे स्वागत के लिए। तो यहाँ बाबा मिलेंगे, बाहर भालू मिलेंगे, तो आप देख लें भगवान से मिलन मनाना है या भालू से, है ना? भगवान से मिलेंगे ना, इसीलिए कोई भी बाहर जाएगा ही नहीं। और सचमुच दीदी ने जैसे कहा, बाबा का ही सुंदर महावाक्य, मन मना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। हम मनोरंजन के लिए ही तो एक दूसरे से बात करते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन बाबा के इस महावाक्य को गहराई से हम इस तपस्या भट्टी में अनुभव करेंगे कि मन मना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। तो चलिए इस मनोरंजन की सुंदर शुरुआत दीप प्रज्वलन से। मैं भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि सुंदर दीप हमारे सामने लाएं और अनुरोध करता हूँ आदरणीय दीदी से, सरस्वती बहन जी से, सुमन बहन जी से, हमारे संजय भाई से और हमारी सभी टीचर्स बहनों से कि वो मंच पर आएंगे। और आपसे भी अनुरोध कि आप भी अपने स्थान पर खड़े होंगे, मोबाइल का इस्तेमाल आज इस सत्र में कर सकते हैं आप टॉर्च जलाने के लिए, राइट? अपने मोबाइल का टॉर्च जला लेंगे और दीप प्रज्वलन की सुंदर परंपरा में शरीक होंगे। जैसे रोशनी होती है दीपक से, ऐसे स्वयं में आए ज्ञान प्रकाश भरें, एक सुंदर दीप प्रज्वलन से इस भट्टी का आगाज करें। तो दीप प्रज्वलन की सुंदर विधि, सुंदर परंपरा टीचर्स बहनों से अनुरोध करूंगा, वो भी मंच पर आएंगे और शामिल होंगे इस सुंदर हमारे दीप प्रज्वलन की विधि में। और बाकी सभी भाई बहनें अपने स्थान पर अपने मोबाइल का टॉर्च जला करके शामिल होंगे। चले सुंदर शुरुआत, भट्टी का आगाज, तपस्या की गहन अनुभूति के लिए तैयार योगी तपस्वी आत्माएं।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
दीप प्रज्वलन की सुंदर विधि हम सबको ये स्मृति दिलाते हुए कि हमें अपने आत्मदीप को सदैव जलाए रखना है। ये केवल एक विधि नहीं है, लेकिन इस विधि के पीछे जो राज है, रहस्य है, हमें उसका स्वरूप बनकर रहना है, दीपक बनकर रहना है, दीप राज के साथ रहना है। जितना दीप राज के साथ रहेंगे उतनी आत्मा प्रकाशित होती चलेगी, उतने ही आत्मा के संस्कार परिवर्तित होते चलेंगे, उतने ही आत्मा की मलिनता दूर होती चलेगी। तो इस सुंदर भाव को अपने अंदर आत्मसात करते हुए हम इस भट्टी का आनंद लेंगे। और अब चलते हैं उनकी ओर जो हम सब के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा की मूर्ति हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्हें देख करके ही हम योग युक्त हो जाते हैं, जिन्हें देख करके ही मम्मा बाबा की याद आ जाती है, जिनके अंदर मातृत्व का एक अनंत सागर हमेशा उछलता रहता है, जो यही कहता है, यही चाहता है, यही आश हम सबसे रखता है कि हम सब प्यारे बाप दादा के समान बन जाएं। हम सबके परम आदरणीय दीदी निर्मला जी, मैं उनके लिए यही कहूंगा कि नदी सी निर्मल हैं आप, वायु सी शीतल, पर्वत सी शक्तिशाली तो फूलों सी कोमल। कैसे करें बखान दीदी आपकी विशेषताओं का, आपसे ही है ये यज्ञ एक खिला हुआ कमल, आपसे ही है ये यज्ञ एक खिला हुआ कमल। जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एशिया पैसिफिक रीजन का पूरा ही संभाल करते हुए, आईटी विंग की चेयरपर्सन, साथ ही ज्ञान सरोवर की सुंदर संभाल करते हुए भी दीदी को आप देखेंगे कितनी हल्की, कितनी सरल और हमेशा ही अवेलेबल। कभी भी दीदी से आप मिल सकते हैं, उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। ये उनकी आध्यात्मिक साधना की गहराई है जो हम सबको प्रेरित करती है। अनुरोध करता हूं दीदी से अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय दीदी,
ओम शांति। बाबा के घर में
ज्ञान सरोवर में आपका फिर से स्वागत है। स्वागत सचमुच आप सौभाग्यशाली हो कि आपको भक्ति करने का चांस मिला। भट्टी में लक्ष्य रखना है, एक बाबा की याद रहे और एक बाबा से जो संबंध की अनुभूति नहीं की है वो करके जाए। बाबा को कहते हैं तुम माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, साजन हो, बच्चा। तो अभी अभी मुरली में बाबा ने कहा था कि पेचदार बात ये है कि भैलों को भी बाबा को साजन बनाना है। कितने भाइयों ने बाबा को साजन का अनुभव किया, जरा हाथ उठाना। 10-15। कितनी माताओं ने साजन का अनुभव किया है? मेजोरिटी। तो जो संबंध का अनुभव अभी तक नहीं किया है वो करना। अंतर्मुख होके अपने आप की जांच करनी है कि मेरे में अभी कौन सा गुण नहीं है या कौन सा अवगुण है। अवगुण को निकालना है तपस्या द्वारा और गुण को भरना है। जितना ऑपोजिट गुण भरते जाएंगे हमारे विकार निकलते जाएंगे। यदि क्रोध है सहनशीलता का गुण धारण करो, स्नेह का गुण धारण करो, धैर्य धारण करो। कई बार हमारे में धीरज नहीं रहती है, एक बार का, दो बार का अभी नहीं सहन होता। तो काम महाशत्रु को तो मेजोरिटी ने जीत लिया, पर क्रोध, देभान, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आलस्य, अलबेलापन, कोई भी विकार ना रहे, सूक्ष्म अंश भी ना रहे, ये देखना हो। स्थूल में तो ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु देखना है मनसा आम कृषि से प्रभावित तो नहीं होते, आकर्षण तो नहीं है, फैमिलियरिटी तो नहीं है, कामना तो नहीं है। तो इसी रीति से सूक्ष्म रूप को त्याग करना है और बाप समान बनने का तो लक्ष्य ही है। मम्मा बाबा को हम फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाबा ने परिवार में रहकर नष्टो मोहा का एग्जाम्पल बने। उनका हर एक बच्चे के तरफ समान प्यार था और उनके लायकात देकर उनको पोजीशन दी। भल उनका पूरा परिवार ज्ञान में था पर यज्ञ की जिम्मेवारी मम्मा को दी। निर्मल शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी भी इतने ही स्ट्रांग थे परंतु नहीं, मम्मा नंबर वन थी। उनको यज्ञ की हेड बनाया, खुद ट्रस्टी नहीं बने, माताओं को ट्रस्टी बनाया। तो हमें ये देखना है कि हम मम्मा बाबा की तरह तपस्या करें। और यहाँ ये चांस है तपस्या करने का, न खाना पकाना है, न शॉपिंग करनी है, न बर्तन साफ करने हैं, न कपड़े धोने हैं, कुछ नहीं। बस क्लास करो, चाय का क्लास पियो, खाओ पियो और तपस्या करो। कोई लौकिक जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए समय का पूरा लाभ लेना है। तो जिस रीति से हम लाभ लेंगे तो फिर यहाँ का अभ्यास वहाँ भी जाकर चालू रख सकते हैं। घर को मधुबन बनाना और यहाँ जैसी दिनचर्या वहाँ भी रखना, हर एक के साथ घर में रहते अलौकिक संबंध रखना, न्यारा रहना और प्यारा रहना, मेरापन छोड़ देना है, सब कुछ तेरा, बाबा का सब कुछ। तो आप बाबा को बोझ दे देंगे ना, हल्के हो जाएंगे और उड़ते रहेंगे। तो यही लक्ष्य रखना कि हम यहाँ फरिश्ता बनकर घूमते रहें, स्थूल गिफ्ट के साथ ये गिफ्ट भी आज ले लो, फरिश्ते की ड्रेस। अपने को फरिश्ता समझ के चलना, औरों को भी देखना ये फरिश्ता है। तो इससे क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा। और जब आप अपने स्थान पर पहुंचेंगे, आपके परिवार वाले आश्चर्यचकित हो जाए कितना परिवर्तन आ गया 5 दिन में। तो परिवर्तन तो हमारा लक्ष्य है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर देवता बनेंगे। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ की गति को अभी तीव्र बनाना है और अपने से संतुष्ट रहें और को भी अपने से संतुष्ट रखे। बाबा तो संतुष्ट रहेगा यदि हम खुद संतुष्ट हैं। ओम शांति।
स्थूल सौगात से पहले दीदी ने हम सबको कौन सी सौगात दे दी? फरिश्ते के ड्रेस हा? तो यहां से अभी से ही पहन लीजिएगा। इस सौगात को रखना नहीं है आपको संभाल के, लेकिन इसे पहन के ही जाना है। ठीक है, तो पहन ली सभी ने सुंदर सी ड्रेस पहन ली हा? तो दीदी को एक हाथ हिला करके हम अश्योर करें कि दीदी आपने जो भी हमें शिक्षा दी है उसके हम स्वरूप जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। बाबा से सुंदर संबंध की अनुभूति भी करेंगे, अपने अंदर सुंदर गुणों की धारणा करेंगे, अवगुण को छोड़ेंगे और साथ ही तीव्र पुरुषार्थ करते हुए फॉलो फादर करके बाबा के समान बनेंगे। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हम सबका परम सौभाग्य है कि दीदी हमारे बीच रहेंगे, हम सबको मुरली सुनाएंगे, शक्तिशाली योग कराते हुए दृष्टि देंगे। तो कितना बड़ा भाग्य है हमारा, एक ऐसी महान विभूति जिसके सिर पर बाबा ने हाथ रख करके इस सुंदर ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी दी है। और बाबा ने ये कहा था कभी कि यदि डॉक्टर निर्मला जैसी मुझे 21 कुमारियां मिल जाएं तो मैं भारत को, विश्व को अभी स्वर्ग बना दूं। ऐसी श्रेष्ठ विशेष महान आत्मा हमारे बीच हैं, तो ऐसी दीदी का सुंदर लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। तो हम इस लाभ को जरूर लेंगे और पूरी तरह उपस्थित रहते हुए इस भट्टी का आनंद लेंगे। अगला 3 दिन हम सबके लिए कैसा होगा, भट्टी की रूपरेखा कैसी होगी, वैसे आपके बिल्डिंग में जो भी प्रोग्राम का शेड्यूल है वो लगा तो दिया गया है, लेकिन उसकी रूपरेखा कैसी रहेगी, क्लासेस कैसी रहेंगी, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, कौन कौन से ग्रुप आए हुए हैं दीदी को हम ये भी बताना चाहेंगे। तो मैं सुवन बहन से अनुरोध करूंगा कि परिचित कराएं कि कहां कहां का ग्रुप हमारे बीच आया हुआ है। सुवन बहन,
मुख्यतः इसमें 2 ग्रुप से दीदी, लुधियाना से जो भाई बहने आए हैं उठ खड़े होंगे, करीब 200 भाई बहने हैं लुधियाना और लुधियाना के कनेक्शन से है। आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जयपुर राजा पार्क सेंटर के कनेक्शन से जो भी भाई बहने आए हैं आप खड़े हो जाएंगे। आप भी करीब 200 भाई बहने हैं, आप सभी का भी स्वागत है। बैठे। इसके अलावा कोई और है? हाँ जी,
खड़े हो जाइए।
उदयपुर, उदयपुर भी राजा पार्क के कनेक्शन से है ना? जोधपुर भी कनेक्शन, कनेक्शन वाले हैं सारे है ना? ठीक है, वही 2 ग्रुप से दीदी इस बार। ओम शांति।
तो अगले 3 दिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपकी पूरी दिनचर्या कैसी रहेगी वो बहुत जरूरी है, उसका जानना भी और उसका पालन करना भी। तो उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संजय भाई जी को। संजय भाई जी 1990 से बाबा के ज्ञान में हैं और 92 से ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से अपनी सुंदर सेवाएं दे रहे हैं। सुंदर रोटी जो आप खाएंगे, तो रोटी बनाने की सुंदर सेवा, उस विभाग के संचालन की सेवा और साथ ही स्पार्क आप जानते हैं एक हमारा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है, रिसर्च सेंटर है पूरे यज्ञ का, जहां रिसर्च होते हैं, उसके आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं इस विंग के। बहुत ही धीर गंभीर अनुरोध करता हूं संजय भाई जी से कि हम सबको रूपरेखा बैठी की बताएं और आने वाले दिनों में किन बातों का भी ध्यान रखना है उससे भी अवगत कराएं। संजय भाई।
ओम शांति। बाबा के घर में आप सबका पुनः स्वागत है। आप सब एक सुंदर लक्ष्य लेकर के यहाँ आए हैं साधना का, उसको देखते हुए आपके तीन चार दिनों की जो दिनचर्या है वहां पे तैयार की गई है, जैसा कि सुमन बहन जी ने भी बताया और रूपेश भाई जी ने भी बताया कि जितने भी भवन हैं जहां पर आप ठहरे हैं उसके मुख्य द्वार पर ये जो शेड्यूल है वो चिपकाया गया है और आपने देखा भी होगा। फिर भी आपके ध्यान पर रखने के लिए एक बार मैं इसको ब्रीफ जरूर करना चाहूंगा। हर दिन की दिनचर्या लगभग एक जैसी ही रहती है। आपकी दिनचर्या की जो शुरुआत है वो 3 बजे होगी, वैसे यज्ञ के नियमानुसार 3:30 बजे उठने का गीत बजता है, परंतु चूंकि आप एक विशेष लक्ष्य से यहाँ आए हैं, सोना तो हमको जीवन भर ही है, थोड़ा सा नींद का त्याग करके हम यह साधना अच्छी करेंगे, क्योंकि जो माहौल आपको यहाँ मिलने वाला है वो बाहर में नहीं मिलेगा, घर में नहीं मिल पाना है, तो थोड़ा सा हम अपने विश्राम का भी त्याग करके अच्छी साधना करेंगे। आप सब 3 बजे उठेंगे, उठते ही सबसे पहले क्या करेंगे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे। ये हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले जीवन भर के लिए कि जैसे ही आंख खुले सबसे पहले कौन दिखे। कहते हैं ना, अगर किसी की शक्ल या अच्छा हो तो देखते हैं, तो दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी गुजरती है। तो बाबा से सुंदर तो कोई है नहीं ना इस संसार में, तो आदत सी बन जाए कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं सामने बाबा को देखें और गुड मॉर्निंग करेंगे। तो हम बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, थोड़ा सा योग करेंगे और उसके बाद फिर मुंह हाथ धुलाई करके हम सब यहाँ पर आएंगे। आपको ये भी ध्यान में रहे कि जितने भी कार्यक्रम आपकी जो भी दिनचर्या चलेगी सारे कार्यक्रम इसी हॉल में होंगे सुबह से लेकर के रात्रि तक। अगर बीच में कोई छोटा मोटा परिवर्तन आता भी है तो आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। 3:30 बजे से 4:45 बजे तक सबका अमृत वेले का योग होगा, उसके बाद आप स्नान आदि के लिए जाएंगे। पुनः आप सब 6 बजे इधर आएंगे और 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक म्यूजिकल एक्सरसाइज होगा। इस हॉल के बाईं तरफ पीछे एक पार्किंग एरिया है, वहां पर खाली स्थान है, हमारे साउंड डिपार्टमेंट के सुरेश भाई जी हैं, बहुत अच्छा बाबा के गीतों पर और म्यूजिक के आधार पर हल्के फुल्के एक्सरसाइज कराते हैं। यहाँ चूंकि आपको सारा दिन बैठना है तो बैठ बैठ करके भी कई बार शरीर थोड़ा अकड़ जाता है, अगर सुबह में थोड़ा सा हम व्यायाम कर लेते हैं तो सारे दिन तक में हम चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। तो 6 से 6:30 बजे तक म्यूजिकल एक्सरसाइज में भी आप सब जरूर शामिल होंगे। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक इस हॉल में आएंगे और योग चलेगा। 7 से 8 बजे तक मुरली चलेगी और उसके बाद मुरली का रिवीजन होगा। कोई ना कोई एक भाई या बहन आपके सामने होंगे जो मुरली को रिवाइज कराएंगे। फिर आप सब नाश्ते पर जाएंगे, नाश्ता करके पुनः आप 9:30 बजे यहाँ आएंगे। 9:30 से 10 यहाँ पर गाइडेड मेडिटेशन होगा। फिर से कोई ना कोई भाई या बहन आपके सामने होंगे जो आपको एक बहुत सुंदर रूहानी यात्रा पर लेकर के जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे संकल्प दिए जाएंगे, उस आधार पर आप योग करेंगे। 10:00 से 11:15 बजे तक एक क्लास होगा, उसके बाद 11:30 से 11:30 बजे तक एक छोटा सा ब्रेक होगा, वापस फिर 11:30 से 12:30 बजे तक एक क्रिएटिव सेशन होगा। आपकी दिनचर्या को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि दिनचर्या बहुत हेक्टिक भी ना हो। आप यहाँ आए हैं तो यहाँ के वातावरण को भी आप अच्छी तरह सेंस कर पाए, उसे महसूस कर पाए, और यहाँ के कण कण में जो पवित्रता और शांति भरी हुई है उसको भी आप अपने अंदर समा पाए। तो दिनचर्या में आपको भरपूर समय भी मिलेगा और ज्ञान और योग का भी समय मिलेगा। तो आप सब क्लास करेंगे और इस समय भी एक 11:30 से 12:30 बजे तक क्लास रखा गया। ध्यान ये रखा गया है कि सुबह में एक क्लास हो और शाम के समय में एक क्लास हो, दो ही क्लास हो, बाकी समय में आपको योग की गहरी अनुभूति कराई जाए, क्योंकि दिनचर्या में हम योग ही कम कर पाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखा गया है। बीच बीच में जो हमारे क्रिएटिव सत्र होंगे, क्रिएटिव सेशंस होंगे, उसमें भी नवीन ढंग से योग ही कराया जाएगा। तो 11:30 से 12:30 का समय थोड़ा भारी होता है, लोगों की दिनचर्या तो 9 बजे 10 बजे शुरू होती है, किसी की 8 बजे, हमारी तो सुबह 3 बजे शुरू हो जाती है। तो 11 बजते बजते 12 बजते बजते कई बार शरीर थक जाता है, तो उस समय अगर योग में बिठाएं तो नींद आने की संभावना रहती है। तो कुछ नए ढंग से, क्रिएटिव ढंग से योग कराए जाएं तो उसमें रुचि भी रहती है, नींद भी नहीं आती है। तो हर रोज 11:30 से 12:30 का जो सत्र होगा वो एक क्रिएटिव सेशन के रूप में होगा। उसके बाद 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपका लंच और रेस्ट रहेगा। भोजन करके आप थोड़ा विश्राम भी करेंगे। विश्राम करने के बाद आप लोग चाय वगैरह पी करके 4:30 बजे फिर से इधर आएंगे। 4:30 से 5 बजे तक फिर से गाइडेड मेडिटेशन आधे घंटे का रहेगा। उसके बाद 5 से 6:15 बजे तक फिर से क्लास होगी। छोटा सा एक फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा और फिर 6:30 से 7:30 बजे तक नौमा शाम का योग होगा। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में जितना महत्वपूर्ण अमृत वेले का योग है उतना ही महत्वपूर्ण नौमा शाम का भी योग होता है। बहुत सुंदर माहौल यहाँ रहता है नौमा शाम के समय में। बाहर में पूरी तरह से शांति रहती है और यहाँ पर सब बहुत सुंदर लाल लाइट में बैठकर योग करते हैं। आप उसको महसूस कर पाएंगे। खास अनुरोध रहेगा कि अमृत वेला और ये जो नौमा शाम का योग है इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो हर रोज 6:30 से 7:30 बजे तक नौमा शाम का योग होगा। फिर 7:30 से 8:15 बजे तक एक छोटी सी क्लास होंगी। उसके बाद फिर आप डिनर के लिए जाएंगे। डिनर के बाद आपको फिर से यहाँ नहीं आना है। वैसे तो आपकी ऑफिशियल दिनचर्या यहाँ समाप्त हो जाती है 8:15 बजे। आप 9 बजे तक अपना डिनर समाप्त करके यहाँ अलग अलग स्थानों पर कई बाबा के कमरे बने हुए हैं, वहाँ पर आप सब जा करके 9 से 9:30 बजे तक गुड नाइट मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आप लोग सोने जाएंगे। चूंकि आपकी दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू हो जाती है तो जरूरी होता है कि हम थोड़ा जल्दी सो जाएं। वातावरण यहाँ बहुत अच्छा है, दुनिया की भेंट में बाहर से आप आए हैं, आपके पास गर्मी अधिक होगी, यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा ऐसे वातावरण में लेट नाइट तक जगना और घूमना। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप 10 बजे से पहले पहले सो जाएं तो सुबह आप जल्दी उठ जाएंगे। अमृत बिला हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई न कोई वरिष्ठ भाई या बहन, जैसे सूर्य भाई जी हैं, रुपेश भाई जी हैं और भी सीनियर भाई बहने हैं, कोई न कोई आकर के आपको सुंदर योग कराए। तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। 30 तारीख को 4:30 बजे, शाम को 4:30 से 8:00 बजे तक एक विशेष सत्र रहेगा। पीछे कोरोना के समय में भट्टियां बहुत चली हैं और उसमें ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया और बहुत ही सफल रहा है। आप में से कौन बाबा से नहीं मिला है, हाथ खड़ा करें, जिसने बाबा मिलन ना किया हो अभी तक। बाकियों ने बाबा मिलन किया है और हम जानते हैं कि बाबा मिलन का सुख कितना अनोखा होता है। धरती पर जब भगवान आए और साकार माध्यम से हमसे बात करे, हमें प्यार दे, तो वो कितना आनंददायक होता है। परंतु समय अनुसार वो पार्ट अब पूरा हो चुका है, तो उसको फिर से रिक्रिएट करने का एक प्रयास किया गया है। तो एक प्रभु मिलन का, बाप दादा से मिलन का एक सुंदर कार्यक्रम 30 तारीख को शाम को 4:30 से 8 बजे तक रखा गया है। ये एक ऐसा सत्र है जो सबको बहुत पसंद आता है, बहुत अलौकिक सुख देने वाला है। इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से होगा, वो तो आप उस समय ही देख पाएंगे। परंतु ये ध्यान में रहे कि उस समय आप बिल्कुल भी कहीं ना जाएं। तो इस तरह से संक्षेप में ये जो दिनचर्या थी जो आप सबके ध्यान में रहे, आप सब चाहें, वैसे तो मोबाइल फोन वर्जित कर दिया गया है, परंतु आप अपना शेड्यूल देखने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। आप फोटो खींच करके और कोशिश करें कि हर सत्र को आप समय से अटेंड करें। एक मर्यादित विद्यार्थी का ये लक्षण है कि टीचर के आने से पहले वो क्लास में आ जाए। एक बार बाबा ने स्वयं किसी मुरली में कहा है कि शिक्षक के बाद क्लास में आना शिक्षक का जैसे कि अपमान है। तो यहाँ पर क्लास कोई भी कराए, हमारा शिक्षक कौन है, बाबा है ना। हम सब बाबा के प्रतिनिधि निमित्त आत्माएं हैं। ये ना सोचे कि ये क्लास करा रहे हैं, वो बाबा क्लास करा रहा है। तो हम सब समय से 5 मिनट पहले आ जाएं तो अच्छा होगा, बजाय कि हम 5 मिनट देरी से आएं। तो इस तरह से ये दिनचर्या थी। इसके साथ साथ कुछ एक सूचनाएं भी हैं, आप सब उन पर भी जरूर ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया प्रारंभ में कि आपके सारे कार्यक्रम यहाँ चलेंगे। जो सुबह का म्यूजिकल एक्सरसाइज है, हॉल के बाईं तरफ जो पार्किंग एरिया है हॉल के पीछे में, वहां पर चलेगा। अब से ही अगले 3 दिनों के लिए आपको कंप्लीट मौन में रहना है। सबने इस चीज पर इम्फेसाइज किया। 3 एम रूपेश भाई कह रहे थे ना, मुख का मौन, मोबाइल का मौन, और तो आप सबको मौन रहना है। मोबाइल को स्विच ऑफ करके आप रख दें, नहीं तो ये मोबाइल भी बहुत डिस्टर्ब करता है। हम सब देखते हैं आजकल मोबाइल एक ऐसी बीमारी के रूप में उभर गया है। अच्छा योग चल रहा है, 1000 लोग बाबा की याद में मगन होके बैठे हैं और बीच बीच में लोगों का फोन बजता रहता है। आप सोचिए, एक का फोन बजता है, 1000 लोगों का कनेक्शन बाबा से टूट जाता है। और भगवान से किसी का कनेक्शन तुड़वाना पुण्य है या पाप है, छोटी छोटी चीजें हम ध्यान में नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की समझ होनी चाहिए। तो 3 दिनों के लिए आप अपने मोबाइल को बंद रखें, खास करके अमृत बेला। कई बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी कई लोग अमृत बेले भी बात करते हैं। जब लोग आते हैं जल्दी जल्दी आएंगे, उनके पैरों से आवाज बहुत आती है। हम फरिश्ते की चाल में धीरे धीरे आए, योग करते हुए आए, और अगर कोई बात कर भी रहा है तो हमें इशारे से उसे ये बताएं कि भाई बात न करें। और आज तो आपने ताली बहुत बजाई, कल से कैसे बजाएंगे पक्का। तो ये चीज ध्यान में रखें कि आप जब भी अपनी खुशी जाहिर करेंगे, एक हाथ की ताली से आप करेंगे। दूसरी चीज कि इस क्लास में 3 दिनों की भट्टी में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा जो हमारी साधना में सहायक बनेगा, और सारी बातें एक साथ याद रहती नहीं है। इसलिए आप सब जब भी क्लास में आए, डायरी पे साथ जरूर लेकर के आए, ना हो तो इसी बिल्डिंग में हम हमारा साहित्य विभाग है, वहां से आप जरूर उस चीज को परचेज करें। ये अमूल्य निधि है जो हमको यहाँ से लेकर के जानी है, बाकी परचेजिंग आप करें ना करें, लेकिन ये चीज यहाँ से जरूर लेके जाएं और उसके आधार पर आप पूरे वर्ष के लिए अपने पुरुषार्थ का प्लान बनाएं।